धर्मस्थ का प्रसाद। मनुष्य समाज समय की नदी के तट पर स्थित वन समान है। समय की नदी में आने वाले प्लावन ईश्वर की भूमि को उर्वरा करते रहते हैं। इसी प्रकार सागल के नगर समाज में परिवर्तन के अनेक प्लावन आए और भावनाओं और अनुभूतियों के उर्वरा अस्तर समाज की भूमि पर छोड़ते गए। सागल के उसी समाज रूपी वन में वयोवृद्ध महापंडित धर्मष्ट देव शर्मा कालांतर से उपस्थित महान वट वृक्ष के समान थे। उनके केश शमस्त्र और भ्रुकटी ही नहीं, शरीर के लोम भी श्वेत हो गए थे। बीते समय ने उनके शरीर का स्वत्व शोषण कर उसे जर्जर कर दिया था, परंतु अनुभूति के मूल तत्वों द्वारा 100 वर्ष से अधिक समय तक समाज की भूमि से अनुभव का रस ग्रहण करते रहते से उनकी भावना सजग और प्रबल बनी रही थी। महापंडित के यौवन काल में महाप्रतापी यवनराज मिलिंद ने दुर्घर्ष यवन सेना लेकर बद्र से पौरव वंश के राज्य का उच्छेदन कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। महाराज मिलिंद ने उनके पिता पौरव राज्य के धर्मष्ट महापंडित बागीश शर्मा का स्वर्गवास होने पर पंडित देव शर्मा की विद्वता और बुद्धि के आदर में उन्हें धर्मष्ट का पद सौंप दिया था। वर्णाश्रम धर्म की नीति प्रथा और व्यवस्था में यवन पद्धति को संपूर्ण देकर उन्होंने अनेक वर्ष तक न्याय की व्यवस्था की। प्रचंड प्रतापी मिलिंद की तथागत के धर्म चक्र में आस्था हो जाने पर महापंडित ने न्याय को सर्वभूत दया और मानवता की भावना से अनुप्राणित होते देखा। उनके ही जीवन काल में महाराज धार्मिक मिलिंद राजपाट त्याग प्रबंध्या ग्रहण कर निर्वाण पथ के पथिक हुए। महाराजा मिलिंद के उत्तराधिकारी हीन होने से बद्र में कुलों की गणराज्य की स्थापना हुई और महापंडित देव शर्मा नई परिस्थिति में धर्मस्थान के आसन से न्याय की परिवर्तित भावनाओं के अनुसार व्यवस्था करते रहे। महापंडित की 3 पत्नियों से 3 पुत्र हुए, उनमें से 2 जीवित रहे। इन दोनों पुत्रों में धर्मष्ट के 4 पौत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र से प्राप्त ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी ने एक प्रपौत्री को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की संध्या में सूर्य का प्रकाश रहते भी रवचंद्र की रेखा का उदय मलान नहीं होता, प्रकाश का वह अंकुर छीन होकर भी दिव्य चंद्रिका का आश्वासन लिए रहता है, उसी प्रकार धर्मष्ट के पुत्र पौत्र से समृद्ध और संपन्न कुल में कन्या का जन्म उल्लास का कारण हुआ। उस कन्या के उज्ज्वल भविष्य के विश्वास से उसे दिव्या पुकारा गया। दिव्या चंद्र की कलाओं की भांति दिन दिन दीप्यमान होती गई। दुर्भाग्य से दिव्या के पितामह और पिता माता तीनों ही किसी देवी प्रकोप से व्याधि द्वारा अकाल में काल कवलित हो गए। उन तीनों के भाग का भी स्नेह पाकर दिव्या प्रतिपितामह के समीप अत्यंत वत्सल हो गई। बहुदृष्टा उदार महापंडित धर्मष्ट का संपन्न प्रसाद प्राचीर और उद्यानों से वेष्टित था। प्रचुर दास दासियों से सेवित विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उस प्रसाद में श्रुति स्मृति दर्शन न्याय और तर्क का मंथन वर्णाश्रम नीति के पंडितों यवन दार्शनिकों और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मत निर्णय और गोष्ठी सुख के लिए भी निरंतर होता रहता था। धर्मष्ट के प्रसाद में सुरा और सुंदरी के वेशन की अपेक्षा ज्ञान और तर्क का अनुराग अधिक प्रबल था। अतिथि युक्ति और तर्क की लहरों में रजत आधारों पर स्फटिक के चस्कों में कापिशायनी सुरालिये सम्मुख खड़ी श्याम और सिंगल दासियों को भूल जाते थे। उस ज्ञानमय वातावरण में अंतःपुर आस्था नागार और चतुष्शाल के तोड़दों से ताम्र और रजत की पिंजरों में लटके सुख सारिका भी परस्पर होड़ में अनेक सूत्रों और परिभाषाओं का उच्चारण करते रहते थे, अथवा वे पक्षी तंद्रा दूर करने के लिए सहसा पुकार उठे। आपष्टम सूत्र काका तीलिये न्यायेन पतंजलि कौटिल्य संक्रमणाद संक्रमणाद वा दोसाद सीत दासाद सीत। महापंडित धर्मष्ट के आस्थान में ज्ञान और कर्मकांड के प्रसंग श्रुति स्मृति के शब्द प्रमाण और न्याय के तर्क प्रमाण वेदों के एकमेवाद उत्यम और नासनीयवाद के लिए स्थान था। वहां यमन ऋषि प्लाटो के प्रतिमान जगत से परे तर्क प्राप्त ध्रुव सत्य के विमर्श और तथागत के अनात्म कर्मवाद के लिए भी स्थान था। उनकी उदारता में ब्रह्मलोक और निर्वाण दोनों की ही अवज्ञा करने वाले सागल के धर्मज्ञ विप्र समाज द्वारा लांछित और तथागत के अभिधर्म द्वारा अभिशप्त लोकायत के समर्थक केवल स्थूल प्रत्यक्ष ही लोक को सत्य और जन्मांतर में कर्मफल को असत्य बताने वाले चारवाक बारिश के लिए भी स्थान था। धर्मष्ट के न्याय द्वारा 2 बार दंडित होकर भी बारिश महापंडित का कृपा पात्र था। बारिश तक्षशिला से मूर्तिकला का ज्ञान प्राप्त कर सागल में लौटा। मिलिंद विहार के सिंह द्वार के तोरण पर भगवान तथागत के जीवन चित्र अंकित कर रहा था। एक दिन उसने तथागत के पूर्व अवतारों को मिथ्या विश्वास बताकर संघ स्थिवर से की प्रतिज्ञा को भंग कर जातक कथा उत्कीर्ण करना अस्वीकार कर लिया। संघ स्थिवर ने भोग लिप्सा के सुख को मिथ्या भ्रांति के रूप में दिखाने का आदेश दिया। बारिश ने यह भी स्वीकार न किया। संघ स्थिवर द्वारा धर्मस्थान में उपस्थित किए गए प्रतिज्ञा भंग के अभियोग में न्याय में धर्मष्ट ने बारिश को अर्थदंड दिया। उसी दिन संध्या समय उन्होंने अपने प्रसाद के आस्थान में बारिश को निमंत्रित कर समाज में उसे अपने ही उपधान पर आश्रय स्थान देकर उसका आदर भी किया। स्वभाव से विचारक होने के नाते धर्मष्ट के आस्थान में बारिश का भी निरादर न था। महापंडित को किसी भी वाद के प्रति पूर्ण सत्य का आग्रह न था। वे न किसी वाद को पूर्णतः मिथ्या कह पाते थे। वेद वचन एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति ही उनका उदार मत था। इस वातावरण में पोषित होकर दिव्या ज्ञान कला और संस्कृति से उसी प्रकार भिजी हुई थी जैसे कमल जल से भीगा न रहने पर भी उसमें जल समाया रहता है। दिव्या की विशेष रुचि संगीत और नृत्य में थी, परंतु वृद्ध पितामह के निरंतर साबिप्य से वह ज्ञान के प्रसंग से भी अबोध न थी। उसने ज्ञान को शब्दों की अपेक्षा भावना में ही पाया था। गत रात्रि मनुपर्व उत्सव में विलंब हो जाने के कारण प्रातः दिव्या अपने शयन कक्ष से भी विलंब से निकली। सुखद आलस्य में सभी काम विलंबित गति से हो रहे थे। मध्याह्न ही से उसे ध्यान था कि गत रात्रि कला प्रदर्शनी में सम्मान पाने के कारण संध्या समय साधुवाद देने वाले अतिथियों की संख्या अधिक होगी। संध्या की बात सोचकर उसका मन और शरीर पुलक से भर जाते। दिव्या को स्मरण हो आया गत संध्या उसकी सेविका में कंधा देने के गौरव के लिए आचार्य पुत्र आर्य रुद्रधीर ने खड़ग खींच ली थी। रुद्रधीर प्रायः ही धर्मष्ट के आस्थानागार में अथवा संध्या के समाज में उपस्थित होते थे। उन्हें आर्य बारिश की उपस्थिति असह्य होती थी। बारिश से उनके तर्क में कटुता आ जाती। तात प्रायः उपेक्षा कर देते थे। महापितृवय विष्णु शर्मा बारिश की श्रृंखलता से विरक्ति अनुभव कर मौन हो जाते और पितृव्य प्रद्युम्न शर्मा विरोध से मुस्कुरा देते। बारिश उपेक्षापूर्ण अहंकार से तहास कर देता। दिव्या रुद्रधीर और बारिश के द्वंद्व से विरक्ति भी अनुभव करती और कौतूहल भी। आर्य रुद्रधीर का एक विवाह 2 वर्ष पूर्व हो चुका था, परंतु वे कुमारी दिव्या के प्रति भी अनुरक्त थी। आचार्य कुल के प्रति आदर का भाव होने पर भी दिव्या को रुद्रधीर की द्वितीय पत्नी बनने की कल्पना रुचिकर न हुई। इसी प्रकार की स्मृतियों में वह संध्या की कल्पना कर रही थी। दासी ने संदेश निवेदन किया, तात धर्मष्ट कुमारी का स्मरण कर रहे हैं। धर्मष्ट ने स्नेह से दिव्या के केसों पर हाथ रखकर आदेश दिया, वत्स दास त्र्यंबक ने निवेदन किया है कि कोई रथारूढ़ भद्र अभ्यागत द्वार पर उपस्थित है। मैं गत रात्रि के श्रम से क्लांति अनुभव कर रहा हूँ। पुत्री अभ्यागत की अभ्यर्थना कर कुशल क्षेम और आने का कारण पूछो। दिव्या दासी के हाथों में रजत आधार पर तांबूल और अर्घ्य लेकर आस्थानागार में पहुंची। सम्मुख मुख द्वार से यवन सामंत के समान गौरवर्ण, परंतु द्विज के समान कृष्ण नेत्र, ऊंचे और बलिष्ठ शरीर क्षत्रिय वंश युवक ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में प्रवेश किया। युवक मूल्यवान कौशे वस्त्रों को उपेक्षा से धारण किए था। दिव्या ने पहचाना गत रात्रि का सर्वश्रेष्ठ खनक नारी आयुष्मान पृथुसेन। दिव्या ने अभ्यागत के सम्मुख बंध कर नासिका तक उठाकर नमस्कार से स्वागत किया। आर्य आश्चातम और दासी के हाथ से अर्घ्य आधार ले अतिथि के सम्मुख उपस्थित कर प्रार्थना की। आर्य अर्घ्य ग्रहण करे। क्षुब्ध अभ्यागत नमस्कार का उत्तर गंभीरता से देकर अर्घ्य ग्रहण करने से पूर्व ही बोला, भद्रे महाश्रेष्ठी पृष्ठ का पुत्र मैं पृथुसेन धर्मष्ट के द्वार पर न्याय की भिक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आस्थानागार के मुख द्वार के तोरण से पिंजरे में लटकी वाशाल सारिका बोल उठी, न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा। दिव्या के ओठों पर अभ्यागत के स्वागत में शिष्टाचार की शत मुस्कान सारिका की वाचलता से हास्य में परिणत हो गई। कुमारी ने आश्वासन दिया, आर्य अर्घ्य ग्रहण करे, न्याय द्वार से न्याय के लिए निराश न होना पड़ेगा। अमूर सारिका भी सत्य की साक्षी है, मैं कुमारी के आश्वासन पर विश्वास करता हूँ। विनय से उत्तर ने पृथुसेन ने कुमारी द्वारा निर्दिष्ट आसन ग्रहण कर अर्घ्य पात्र से तांबूल ले लिया। दिव्या समीप बैठकर बोली, तात धर्मष्ट इस समय अस्वास्थ्य के कारण आदि आर्य की साक्षात्कार यदि आर्य का साक्षात्कार का लाभ न पा सके तो आर्य उन्हें क्षमा करेंगे। पृथुसेन मृद धर्मष्ट के कुशल क्षेम के प्रति मंगल कामना कर संभ्रम से आसन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने धर्मष्ट की पपोत्री के न्याय आश्वासन के प्रति संतोष प्रकट किया। पुनः दर्शन की आशा लेकर वह लौटना ही चाहता था कि धर्मष्ट के पुत्र दिव्या के महापितृव्य पंडित विष्णु शर्मा और पितृत्व प्रबुद्ध शर्मा चिंताशील मुद्रा में वार्तालाप करते हुए आस्थानागार में प्रविष्ट हुए। प्रबुद्ध शर्मा ने अतिथि को संबोधन किया, आयुष्मान प्रबुद्ध शर्मा नमस्कार करता है। विष्णु शर्मा ने प्रबुद्ध शर्मा की ओर दृष्टि डाल अभिवादन का संकेत मात्र कर कहा, अभ्यागत की अभ्यर्थना करता हो। पृथुसेन विदा की आज्ञा ले चुका था। नवागंतुक पितृव्यों का व्यस्त भाव देखकर उनके वार्तालाप में बाधा न बनने के विचार से वह सत्कार का उत्तर देकर विदा हो गया। दिव्या को संबोधन कर विष्णु शर्मा बोले, दास सारथी पुत्र का तुमने अर्घ्य से सत्कार किया, तुम अपने पितृव्य प्रबुद्ध शर्मा की भांति समदर्शी तथागत की शिष्या होने योग्य हो। दिव्या पितृव्य के उपालंब से मौन रह गई, परंतु प्रबुद्ध शर्मा ने अपने और अपनी भातृजा के प्रतिव्यज्ञ का उत्तर परिहास से दिया, तात पृथुसेन का पिता किसी समय दास था, आज वह अनेक दासों का स्वामी सागल का प्रमुख सृष्टि और गणपति का प्रमुख मंत्रणा दाता है। सागल में उसकी अवज्ञा कौन करता। तात पृथुसेन दासों की भांति हाथ में चवर लेकर नहीं खड़ग लेकर आता है, क्यों दिव्य वत्स से वह सम्मान का अधिकारी है। विष्णु शर्मा उद्विग्न हो उठे, धन संचय से सम्मान का अधिकारी, प्रबुद्ध श्रमणों और यवनों की संगति और व्यापारिक वैश्य वृत्ति की प्रवृत्ति होने से तुम्हारी ऐसी बती है। धन की महिमा तुम्हारी दृष्टि से इतनी अधिक है, धन भोग्य वस्तु है, मनुष्य का मूल निश्चित नहीं कर सकता। धन के इसी कर्म के कारण विष्णु शर्मा का उत्तर स्वर तीव्र हो गया। गत रात्रि इस दासपुत्र ने द्विज सामंत पुत्रों से स्पर्धा कर सरस्वती पुत्री की सेविका में कंधा लगाने का साहस किया। रुद्रधीर के बर्जने पर वह खड़ग खींचकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण के सम्मुख दास खड़ग खींचे। इस प्रकार के अनाचार से बद्ध राज्य में कुलगर के शासन और वर्णाश्रम का क्या अधिकार और सम्मान रह गया। प्रबुद्ध सरवा ने पुनः मुस्कुराकर उत्तर दिया, परंतु तात मनुष्य और उसके वंश की स्थिति में परिवर्तन आता है। छत्रपति मौर्य वंश भी एक समय नापितों का कुल था, दूसरे समय संपूर्ण जम्बूद्वीप ने उसकी वंदना की, पिपश्रेष्ठ चाणक्य ने उसका मंत्रित्व किया। भूमि अब उस अनाचार से मुक्त हो चुकी है। विष्णु शर्मा बोले, अपनी हे स्थिति को सम्मानित बनाने के लिए ही वर्णाश्रम का पद न्यून करने के लिए ही अशोक ने मुंडियों की शरण ली थी। यदि देवता मनुष्य से अधिक समर्थ है तो देवता का अग्नि को धारण करने वाला ब्राह्मण भी शूद्र के समान नहीं। अग्निमुख ब्राह्मण के श्राप से पातक ध्वंस होकर पृथ्वी पाप मुक्त हुई है। कल अभिजात कुल की स्पर्धा में दासपुत्र ने खड़ग खींचा था, यदि वह पीछे न हट जाता उसके रक्त से उसके सर्वश्रेष्ठ खड़गदारी होने के अहंकार का प्रायश्चित हो जाता। यवन गणपति के अविचार से ही यह समस्या उत्पन्न हुई। यह बद्र के कुलगर का राज्य है, यवन मिलिंद का धर्मचक्र नहीं। नीचों को यह कहने का अहंकार, कम्बना भवती बामनो, ब्राह्मण को जिसने देवत्व दिया है केवल वही उसे अपनष्ट भी कर सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह बुद्धि समय पर वृष्टि न करके दुष्कर्म से मेघराज इंद्र को भी अपनष्ट करेंगे? कह के कम्बना भवती ने वो नास्तिकता का दंड अब सागल में पापी को जिहवा खींच कर दिया जाएगा। वह संभवतः तात के न्याय की शरण मांगने आया था, परंतु तात प्रभु शर्मा ने पितृव्य के प्रति आदर के विचार से विनीत परिहास में उत्तर दिया, देवता का विधान केवल विश्वास और अनुमान की वस्तु है, जैसे देवता के अस्तित्व का प्रमाण केवल विश्वास और अनुमान है। देवता और उसका विधान अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ग्राह्य नहीं है, अनुमान अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। यदि अनुमान अनुभव द्वारा प्रमाणित नहीं हो तो संदिग्ध है। उत्तेजित होकर विष्णु शर्मा ने प्रत्युत्तर दिया, यह मुंडियों का कुतर्क है, प्रमाण क्या है? आप्तपुरुष का वचन प्रमाण है, जो नहीं जानता उसके लिए जानने वाले का वचन प्रमाण है। ब्राह्मण के अधिकार का प्रमाण ब्राह्मण की शक्ति है। प्रभु शर्मा के बाहु मूल पर बंधे रत्न जटित अंगन की ओर संकेत कर उन्होंने आवेश में पूछा, क्या मूल्य है आज यह रत्न धारण करने का? प्रबुद्ध के कंधों पर पड़े उत्तरीय की ओर उन्होंने उंगली उठाई, क्या प्रयोजन है आज यह कौशेय वस्त्र धारण करने का? जब दास और शूद्र भी ऐसे ही इससे भी उत्तम वस्त्राभूषण पहने फिरते हैं, क्या अब यह वर्ण वंश और अधिकार का परिचायक है? यदि मौलिक भित्ति सुन सकने योग्य संख्या में मिल सके तो उन्हें माथे पर ढोने का क्या अर्थ? यदि शूद्र दास भी द्विज के समान अधिकार पा सकता है तो द्विजत्व क्या है? क्या ब्राह्मण के मंत्र और क्षत्रिय के शस्त्र की शक्ति शूद्र की सेवा के लिए है? विष्णु शर्मा आवेश में दीर्घ पदों के से अंतरपुर की ओर चल दिए। महापितृव्य के क्रोध से अप्रतिम होकर दिव्या उंगलियों में उत्तरीय का छोर लपेटती हुई भूमि पर पड़ी बने तूलिका लेखन की ओर दृष्टि गड़ाए खड़ी थी। प्रबुद्ध सर्व भ्रातृदा को सांत्वना देने के लिए करुणा से बोले, वत्से खिन्न होने का कारण नहीं, अभ्यागत का सत्कार करना ही चाहिए। पितृव्य दास पुत्र को नमस्कार करना नहीं चाहते, परंतु अभ्यागत की अभ्यर्थना तो उन्होंने भी की थी, बद्र की परिपाटी की उपेक्षा आर्य कैसे करते? पितृव्य की सहानुभूति से दिव्या का क्षोभ उबड़ आया, नेत्रों में छलक आया, अस्त्र सिपाने के लिए उत्तरीय के छोर से मुख ढके, सिर झुकाए खड़ी रही। दिव्या के पीठ पर हाथ रख प्रबुद्ध ने श्रेय से प्रताड़ना की, बालिश पितृव्य का मन उस प्रकार है तो क्षोभ का क्या कारण है? मतभेद स्वाभाविक है, तात की गोष्ठियों में तूने विज्ञों को कभी सहमत होने देखा है? और उनमें मूर्ख कौन है, आचार्य प्रवर्धन या पंडित इकिन या अर्हत धर्मरक्षित और चिरुक या आर्यमानिश? दिव्या ने आंसू पोंछकर अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, गत संध्या ही तो गत परिषद ने आय पृथुसेन को सागल का सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी का सम्मान दिया है, इसमें मेरा दोष क्या है? हाँ, प्रबुद्ध शर्मा ने कौतुक से समर्थन किया, वह आयुष्मान तुम्हारे प्रति सम्मान प्रदर्शन का अवसर पाने के लिए आचार्य पुत्र रुद्रधीर का रक्त बहाने को तत्पर हो गया, तुम उसका आदर न करोगी? भद्रे, भद्र रक्त कृतज्ञ नहीं होता। प्रबुद्ध का बलिष्ठ हाथ अपने दोनों कोमल करो में अनुराग को थाम कर दिव्या ने प्रश्न किया, तात आयुष्मान पृथ्वी से नहीं वह युवक थे, इसी कारण महापृथ्वी भी उससे खिन्न है? शिविका की उपर होने और जनसमूह की उबड़ आने से मैं कुछ जान न पाई। हाँ हाँ जा आओ। स्नेह से दिव्या को अंक में भरकर अंतःपुर के द्वार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, शिविकारूढ़ शिविका वाहनों की वाहकों की ओर कब देखती है? भद्रे, दासी से मेरे लिए स्नान का आयोजन करने के लिए कहो, देखो ना श्वेत से मार्ग की धूल शरीर पर जम गई है। पृथुसेन के लौट जाने पर दिव्या उसके आगमन का समाचार और प्रयोजन तुरंत ही तार धर्मष्ट के सम्मुख न कह सकी। संध्या हो गई और महापंडित अनेक कार्यों में व्यस्त होकर रात्रि के प्रथम पहर तक अभ्यागतों से घिरे रहे। दिव्या के मन वह प्रसंग निरंतर बना रहा, अन्य सब विषयों के ऊपर वही प्रसंग उठा था, मन में दुविधा से अनुभव होने लगी। उसके अनेक कारण थे, महापितृव्य विष्णु शर्मा का व्यवहार, घटना से स्वयं अपना संबंध, गत संध्या आए अभ्यागतों के समाज में पादक के समय उसने इस विषय का प्रसंग सुना था, वह जानती थी समाचार तात तक पहुंच चुका था। समाचार कहने की अपेक्षा वास्तव में वह उस विषय में टाटका मत ही जानना चाहती थी। दिव्या की उस प्रसंग के प्रति अपनी चिंता ही दुविधा का कारण बन गई। यदि विशेष विचार से पूर्व ही समाचार टाट के सम्मुख कह दिया होता तो कोई बाधा न होती। अब निरंतर वर्णन करते रहने से उसका बोझ बढ़ गया और बाधा अनुभव होने लगी। न कहना भी उचित न था, उसने न्याय का आश्वासन दिया था तो उपेक्षा कैसे करती। एक प्रकार से वचन देना ही हुआ, अन्याय क्यों हो। न्याय अन्याय के प्रसंग में नित्य ही उसके कर भरे रहते थे। उसने कभी उस ओर ध्यान न दिया था, परंतु उस प्रसंग में वह उपेक्षा न थी। दिव्या प्रातः प्रति संध्या ही प्रसाद के उद्यान में प्रपिता व पितृव्यों और महिलाओं की गोष्ठियों में उपस्थित रहती थी। वृद्धजन और कुलिष्ठिया कला में उसकी अद्वितीय क्षमता के लिए साधुवाद देकर आशीर्वाद देती थे। अभिजात युवक और कुलिष्ठिया उसकी स्तुति करती थी और उस प्रशंसा से उसे उत्साह और संतोष होता था। आर्य दुर्दृढ़ी ने उस विषय में कभी कुछ न कहा था, इससे दिव्या को संतोष ही था। उनसे साधुवाद पाने अथवा उन्हें उत्तर देने में उसे असुविधाजनक संकोच अनुभव होता था। यही बात आर्य बारिश के संबंध में थी। एक दिन उन्हें विचित्र ही बात कह दी थी, भद्रे तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। अनैतिकता और अनाचार के समर्थन का अपवाद पाए बारिश के शब्दों, उसके स्वर और नेत्रों के भाव से दिव्या को आशंकामय रोमांच हो आया था। बारिश की बात दिव्या को प्रातः स्मरण हो आती, ये शब्द अर्थ गर्भित थे। मन ही मन दिव्या उसके अर्थ उनकी गूढ़ता और व्यंजना को सोचती रहती। उन शब्दों में माधुर्य गर्व और आशा और स्फूर्ति थी, परंतु उस अव्यवस्थित अपवाद के पात्र स्थान भ्रष्ट युवक के समीप्य से संकोच और आशंका अनुभव होती थी। वह सोचने लगती, सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी आर्य पृथुसेन ने मेरी कला के विजय में मत प्रकट नहीं किया, शिविका के प्रसंग में उनके खड़ग खींचे लेना, यही उनका मत था। दिव्या ने सुविधा और संकोच की कारण धर्मष्ट के मध्यान्ह विश्राम के समय एकांत देख उनके कक्ष में प्रवेश किया। वहां पंडित पर्यंक पर उपधान से पीठ टिकाए बैठे थे। दिव्या ने प्रपितामह के पिंगल केशों को सहलाते हुए पृथुसेन के आने का समाचार कहा और प्रवाह में महापितृव्य विष्णु शर्मा के व्यवहार की बात कह गई। धर्मष्ट माथे पर हाथ रख सब सुनते रहे। फिर दिव्या के मौन में उत्तर की प्रतीक्षा अनुभव कर बोले, बोलो अब तो देवी मल्लिका अपने अवसाद से मुक्ति लाभ का कर कला की आराधना में रत हो गई है न। हाँ तात, दिव्या ने अपने केशों में दृष्टि गड़ाए उत्तर दिया। अब उनके प्रसाद में नित्य नियम से समाज होता है, नवीन शिष्याएं भी उन्होंने स्वीकार की है। संतति का शोक मनुष्य को निश्चित्व कर देता है, धर्मष्ट ने दीर्घ निश्वास लिया। हाँ अब मल्लिका किस शिष्या को अपने आसन का उत्तराधिकारी बनाने की आशा कर रही है, क्या रुचिरा की प्रतिभा उसकी किसी अन्य शिष्या में है। मल्लिका तुम्हें और अपनी पुत्री को अपने दो नेत्रों के समान ही समझती है, संभवतः मानुलिका को, परंतु उससे देवी पूर्ण संतुष्ट नहीं है। टाट मानुलिका में गति का लास्य और लाघवता नहीं है, सत्य है बाली। मल्लिका के उत्तराधिकारी का उनके समान ही प्रतिभाशाली होना सुगम नहीं, प्रकृति में क्रम समरूप नहीं चलते। मल्लिका अपनी गुरु देवी इंद्रा से कहीं आगे बढ़ गई, जन इंद्रा को भूल ही गया। दिव्या का वर विकल हो रहा था। जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को उसने कत्ताई से टाट के सम्मुख निवेदन किया था, उस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। उसने प्रश्न किया, हाँ टाट, धर्मस्थान के सम्मुख तो सभी नागरिक सम्मान है। अपने माथे पर रखा हाथ प्रपोत्री के सिर से टिकाकर विरोध के स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, बाली बाला गुंथन तुलिका लेखन और नृत्य वीरा छोड़कर टुबकी नई ग्रंथियों में उलझ रही हो वत्स। विरोध का उनका स्वर स्वतः ही बदल गया, दिव्यो एक महाराज पौरव का धर्मस्थान है, एक विजय मिलिंद का और एक कुलगर के राज्य का धर्मस्थान है। कुछ क्षण मौन रहकर वे बोले, धर्मस्थान का कोई स्वयं भू और स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की जिह्वा है। इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया हूँ कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। पुण्य स्मृति टाट के समय पौरव वंश और उनके सामंतगण के विचार और उनके अधिकारों और शक्ति की रक्षा का विधान ही न्याय था। फिर मद्रराज्य में तथागत के धर्म की भावना ही न्याय हो गई और यज्ञ में पशुबलि का पुण्य कार्य अपराध हो गया। मद्र के वर्तमान कुलगन के राज्य में कुलों की सत्ता व्यवस्था का आधार है, वर्णाश्रम पुनः मान्यता पा रहा है। अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर दिव्या ने पुनः प्रश्न किया, परंतु टाट आर्य प्रेष्ठ का कुलदासत्व से मुक्त हो चुका है, आयुष्मान पृथुसेन को गण ने सम्मानित किया है। अलिंद के प्रमुख तोरण से लटके पिंजरे में सारिका की ओर दृष्टि के वयोवृद्ध चिंतित स्वर में बोले, ठीक कहती हो वत्स, यही तो जटिलता है। पृष्ठ राजसत्व मुक्त हो चुका है, पृथुसेन गण द्वारा सम्मानित हो चुका है, अन्यथा वह न्याय का प्रश्न लेकर न आता। पृष्ठ द्वारा अपनी माताओं के स्तनों से छीन कर बेच दिए जाने वाला अश्वसावक या दास तो न्याय की समस्या नहीं उठाते। वट से एक व्यक्ति द्वारा न्याय की पुकार का प्रश्न जटिल नहीं होता। युवक पृथुसेन खड़ग बल से अपने अधिकार की रक्षा का प्रयत्न कर सकता है, प्रश्न केवल उनके सम्मान और अधिकार का नहीं, समस्या गूढ़ है। उसने परिसर के सम्मुख सेना में पद के लिए आवेदन किया है, वह उसके योग्य है। उसका पिता महत्वाकांक्षी है, पृष्ठ 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा व्यय कर सकता है। यदि धर्मस्थान पृथुसेन को वर्ग कुल और अभिजात वंश के सम्मान का अधिकार देता है तो वह सेना में पद का अधिकारी हो जाता है। यदि परिषद उसे सेना में पद का अधिकार देती है तो वह अभिजात वंश और कुल का सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। पृथुसेना का सेना में पद पाना सामंत के आसन का पहली सीढ़ी पर पांव जमाना है। यदि प्रत्येक कुल सामंत कुल का पद और अधिकार पा सके तो अभिजात कुल का अधिकार क्या रहेगा। यदि गण उसके द्विज कुलों का होता, स्थिति दूसरी होती, परंतु गण मिश्रित है। उनमें यवन सामंत है, तथागत के अभिधर्म से प्रभावित अनेक क्षत्रिय और वैश्य हैं। उनके लिए वर्ण की शुद्धता और अधिकार का महत्व नहीं, प्रत्युत उन्हें वर्ग वर्ण की शक्ति से स्पर्धा है। इसलिए परिषद में गण संवाहक इस विषय को स्थगित किए हैं। धर्मस्थान में इस प्रश्न का निर्णय समाज की व्यवस्था का प्रश्न है। टाट के उत्तर से अनुत्साहित होकर दिव्या ने पूछा, परंतु टाट मद्रगण राज्य के धर्मस्थान में सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का जो सिद्धांत है। टाट के अत्यंत शुभ्र समस्त्रु से आच्छादित मुख पर मुस्कान झलक आई। सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का रूपक न्याय विधान के प्रति आदर के लिए आवश्यक है, परंतु सिंह और मृग एक साथ जल पीना दोनों की परवशता से ही संभव है। स्वतंत्र केवल उन्हें एक साथ जल पीने के लिए व्यस्त करने वाला शासक है। उनकी यह इच्छा ही न्याय का आधार है। नास्तिक मारिस ने तथागत की जातक कथा उत्कीर्ण न करने की प्रतिज्ञा भंग के अभियोग में धर्मस्थान से अर्थदंड पाया। व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक था, परंतु यदि मारिस दंड भय और अर्थलोह से अपने मत के विरुद्ध आचरण करता तो क्या यह उचित होता? पुत्री न्याय के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। तात्श्रेष से पौत्री के केसों पर हाथ रखे रहे, परंतु मन के क्षोभ से दिव्या के लिए वह स्नेह व्यवहार उस समय अर्थहीन बल्कि मानसिक यंत्रणा बन गया। दिव्या के जन्म से पूर्व भी उसकी माता का स्वास्थ्य छीन था। उसके जन्म के दिन ही दासी धाता ने उसके अपने पीन अष्टनों पर नवजात बालिका लिए उपस्थित हुई। धर्मष्ट के प्रसाद में लोग धाता पर का उसका नाम भूल कर वत्सल कन्या की धाता को सभी धाता ही पुकारने लगे। दासी ने भी उस नाम को स्वामी की कन्या के माता के अष्टानापन्न मानकर गर्व से धारण किया। दिव्या की माता ने अपनी संतान की धात्री की कन्या को अपनी संतान की छाया मानकर छाया ही पुकारा, उसका नाम ही छाया ही हो गया। वयोमृत धर्मष्ट के स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र के एकमात्र पुत्र की एकमात्र कन्या सभी को दुलारी थी। शैशव में ही उसकी माता और फिर भी पिता का देहांत हो जाने से परिवार का अनुराग उसके प्रति और भी उमड़ आया। वह धर्मष्ट के अग्रज पुत्र, अग्रज पौत्र और अग्रज प्रपोत्री सभी की प्रतिनिधि बनकर विशेष आदर और स्नेह की पात्र थी। दिव्या अपनी माता मही और धात्री सहित प्रसाद के उसी भाग में रहती थी जिसमें स्वयं धर्मष्ट रहते थे, परंतु दूसरे पितृव्यों के प्रसाद कक्ष भी उसके लिए पराये न थे। वह तितली की भांति सभी कुंजों पर उड़ती फिरती और उसकी धात्री और छाया उसके साथ रहती। 10 वर्ष की आयु तक छाया केवल दिव्या के लिए क्रिया सखी रही। इसके पश्चात प्रसाद की छोटी मोटी सरल सेवा के लिए भी उसे कभी उसी कक्ष में कभी उस कक्ष में नियत कर दिया जाता। जैसे आकाश में चंद्र की कलाओं की पूर्ति होने से पृथ्वी पर पड़े छिछले जल में पड़ने पर चंद्र के प्रतिबिंब में भी कलाओं की पूर्ति होती है, वैसे ही दिव्या की छाया ने भी वयस्क होकर यौवन पाया। आकाशगामी चंद्रमा तो स्थिर गंभीर गति से अपनी यात्रा पूर्ण किए जाता, परंतु ठिठले जल में पड़ता उसका प्रतिबिंब साधारण कारणों से भी क्षुब्ध हो उठता। छाया अंतापुर में युवा पुरुषों और उसकी युवती पत्नियों की सेवा और अत्यंत सामीप्य से अपने शरीर के विकास और उपयोग से शीघ्र ही परिचित हो गई। एक दिन विनय शर्मा की माता ने छाया को असमय अपने पुत्र के कक्ष में पाकर क्रुद्ध हो उसे सरल सेवा से वंचित करके बावड़ी से स्नान का जल लाने का कठिन कार्य सौंप दिया। भाग्य ने रक्षा की, उसके शरीर पर यौवन उन्मुक्त होकर निखर आया था। मुख पर यौवन का लावण्य था। छाया ने दास नायक बाहुल की दया से अष्टनागार में अतिथियों के सम्मुख मध्य आहार उपस्थित करने की सेवा का कार्य पा लिया। वामनों कंचुकियों जर्जर वृद्धों और ईर्ष्यालु दासियों से भरे अंतःपुर के जीवन से अष्टनागार की सेवा कहीं अधिक रुचिकर थी। वह वैचित्र था, स्वच्छंदता थी। दासों का नायक बाहुल छाया के प्रति सौहृदय था। छाया का मन आस्था नागार तक जान पाने के लिए अधीर हो उठता, परंतु ज्योति पर खड़ी खड़गधारी यवनी की मूर्ति स्मरण करने से शरीर का रक्त जम जाता। उसका मन चाहता कि दास बाहुल की विरह की पीड़ा से व्यथित अपने शरीर को अंतःपुर की विशाल पाषाण भित्तियों से टकरा कर छिन्न भिन्न कर दे, सूलों से भरी झाड़ी में अपने शरीर को जाल दे। कई मास तक वह मलिन रही और फिर भाग्य और देवता की इच्छा मानकर सह गई। दिव्या ने सुना पृथुसेन टाट के सम्मुख आवेदन के लिए प्रस्तुत हुआ है। वह सील के विचार से उस समय जाकर उनके समीप बैठ न सके, परंतु मन उत्सुकता और दुविधा से व्याकुल होता रहा। पृथुसेन ने से टाट विमुख न थे, परंतु उसका अपना मन पृथुसेन से कुछ कहना चाहता था। क्या सो वह स्वयं भी ठीक से न जानती थी। ऐसा ही कुछ सहानुभूति और सांत्वना की खोज में पृथुसेन कुछ भटका सा आश्रय की खोज में भिन्न खिन्न सा जान पड़ता था। दिव्या स्वयं भी कभी उसी प्रकार अनुभव करती थी। तब भरे पूरे प्रसाद में भी सुतरा सूनापन लगता। उस समय महापितृव्यों पितृव्यों माता मही और पितृव्यायों भाइयों और बहनों का स्नेह बोझ सा जान पड़ता। टाट धर्मष्ट के प्रसाद में अन्य परिचित परिवारों में देवी मल्लिका और वासुमित्रा के जहां समाज में अपानकों और समाहय में सब कहीं दिव्या के सतर्क कान पृथुसेन का नाम मधुपर्व उत्सव की घटना और परिसर के सम्मुख पृथुसेन के आवेदन को लेकर मतामत का प्रसंग सुनाते उनके मन में एक कांटा सा बैठ गया। परिसर और धर्मस्थान दोनों ही स्थानों पर पृथुसेन के संबंध में विचार स्थगित था। दिव्या मन में दुविधा रहने के कारण संकुचित और शिथिल रहती, वह कहीं भी संतोष न पाती। माता मही इस जीवन की यात्रा पूर्ण कर अपने विश्वास में परलोक के समीप पहुंच रही थी और अत्यंत परलोकाभिमुख हो रही थी। वे निश्चय न कर पाई थी ब्रह्मलोक अधिक श्रेष्ठ होगा या निर्वाण, इसलिए अंत समय में जानकर वे अत्यंत व्यग्रता से दोनों की ही प्राप्ति के लिए याज्ञिकों, पुरोहित, पुरोहितों, अहर्तों और भिक्षुओं की कृपा के लिए प्रयत्नशील थी। विशाल और विस्तृत परिवार की चिंता उनके लिए केवल क्षोभ का कारण बन गई थी। दासी धाता ने महादेवी का ध्यान दिव्या के शैथिल्य और अन्वयस्कता की ओर दिलाया। महादेवी ने कुमारी के विवाह योग्य आयु के प्रति और ईश्वरतार धर्मस्थ और दूसरे पितृव्यों की उपेक्षा के प्रति असंतोष प्रकट कर दिव्या को व्यस्त रखने के लिए अनेक कार्य निर्दिष्ट कर दिए। उन्होंने आज्ञा दी, प्रपोत्री दिव्या पाकशाला में विशेष पकवानों का आयोजन करे, अतिथियों के लिए विशेष पुष्पमालाएं गूंथे, तुलिका लेखन करे, छाया को पुनः उसकी सहचरी के रूप में नियत करने का आदेश दिया। दिव्या और छाया अंतःपुर के उद्यान में एक कुंज में बैठी मालाएं गूंथ रही थी। सम्मुख अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा था। छाया की उंगलियां द्रुत गति से चल रही थी और उसकी दृष्टि कभी अपनी उंगलियों की ओर, कभी दिव्या के झुके हुए मुख की ओर चली जाती। पीठिका पर बैठी दिव्या की उंगलियां शिथिल थी और दृष्टि निरंतर झुकी हुई। हाथ की अधगुंठी माला छाया पर फेंक कर दिव्या ने मन का अवरोध क्षोभ प्रकट किया, यह झमेला मेरे सामर्थ्य का नहीं, और उत्तरीय से मुख ढक लिया। छाया कुछ क्षण दृष्टि दिव्या के मुख की ओर लगाए मौन रही, फिर बोली, देवभद्रे, महादेवी अम्मा से कह रही थी, तात और पितृव्य कुमारी के आयु का विचार क्यों नहीं करते? वह यौवन की उद्वेग के कारण ही अन्वयस्क है, जैसे ऋतु में पशु पक्षी। आवेश में मुख से उत्तरीय हटाकर दिव्या ने क्षुब्ध स्वर में भर्त्सना की, निर्लज, तू मर जा, तुझमें तनिक सील नहीं। इस प्रकार की धृष्टता के कारण आर्य नमिता ने तुझे अपने कष्ट से निकाला होगा। नहीं भद्रे, छाया ने निसंकोच दिव्या के नेत्रों में देखकर उंगलियों से माला गुटते हुए उत्तर दिया। भद्रे, नहीं जानती स्वामिनी अमिता ने किस अपराध में मुझे कक्ष से बहिष्कृत किया। दिव्या के उत्तर की प्रतीक्षा न कर उसने कहा, उस संध्या आर्य विनय अपने कक्ष में ही थे, उन्होंने कादम्बनी का पात्र उपस्थित करने की आज्ञा दी। पात्र प्रस्तुत करने पर आर्य ने कौतुक से हाथ मेरे अंग पर दबा दिया। मेरे लजाकर सकुचाने से आर्या कुपित हो गई, बोली, तू छली और कुलता है, दासी होकर कुल ललनाओं की महती लाज का नृत्य करती है, तू आर्य को मोहित करना चाहती है। अलम, प्रसंग से खिन्न होकर दिव्या ने मुंह फिरा लिया, परंतु छाया समवयस्का होने और शैशव में स्वामिनी की क्रीड़ा सखी रहने के अधिकार से कहती गई, महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है, संध्या समय आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आर्य रुद्रधीर के आने पर कुमारी उनकी अभ्यर्थना करे। स्वामिनी अमिता महादेवी से कह रही थी, आर्य रुद्रधीर कुमारी के प्रति अनुरक्त है। भ्रिकुटी में बल डालकर दिव्या ने धमकाया, वाचाल, चुप रह, और पीठिका से उठकर अपने कक्ष की ओर चली गई। छाया ने अपने संबंध में लज्जाजनक प्रसंग सुन कुंठा अनुभव कर वह पर्यंक पर जा लेती। लज्जा से अपने पर सिमट जाने के लिए उसने ढूकल ओढ़ लिया। आंखें मूंद कर सिर ढूकल में लपेट लेने पर भी छाया की बात कानों में गूंजती रही, महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है कुमारी आर्य रुद्रधीर की अभ्यर्थना करे। दिव्या प्रायः ही यथावसर अनेक द्विजवंशी और यवन सामंत युवकों की अभ्यर्थना करती रहती है। रुद्रधीर की अभ्यर्थना भी वह कई बार कर चुकी थी। इस समय अभ्यर्थना के आदेश के आयोजन जानकर उसका मन विरक्त हो उठा। स्वर्ण खचित रक्त कौशे से अपने गुम्फित केश बांधे, माथे पर श्वेत चंदन के खौर में रक्त तिलक लगाए, रुद्रधीर उसकी कल्पना में दिखने लगा। उसके उत्तरीय के नीचे यज्ञोपवीत लटक रहा था, परंतु हाथ में खड़ग खींचे वह पृथुसेन को दिव्या की सेविका में कंधा लगाने से बरज रहा था। नेत्र मुंडे दिव्या की कल्पना में रुद्रधीर के प्रति भय और विरक्ति का भाव बैठ गया। दिव्या मुख से नुकुल झटक कर उठकर बैठी, छाया सुनो, क्या काल होगा? दिव्या ने पर्यंग के स्थूल का आश्रय लिए छाया की उंगलियों से माला गुट्टी उसी ओर दृष्टि लगाए अपनी कल्पना में खोई। स्वामिनी की अन्वेषता दूर करने का कर्तव्य भूल गई थी। सहसा पुकार सुनने से सतर्क हो कर उसने द्वार से धाम की ओर देखकर उत्तर दिया, भद्रे, संध्या में विलंब नहीं है, भद्रे के संध्या प्रसाधन की आज्ञा हो। नहीं, हाँ हाँ, चिबुक हथेली पर रखे विचार में अनुमुदी आंखों से दिव्या ने उत्तर दिया। छाया ने नेत्रों में अनुय भर प्रार्थना की, भद्रे, अर्घ्य आधार लेकर सेवा में आस्थानागार साथ चलने की आज्ञा दासी को देने की कृपा करेंगी? अर्घ्य उपस्थित करने के प्रसंग के स्मृति से विरक्ति अनुभव कर दीर्घ निश्वास लेकर दिव्या ने उत्तर दिया, वाचाल, तू बड़ी निर्लज्ज है। पर्यंक छोड़कर उसने छाया को आज्ञा दी, जा कंचुकी को आदेश दे, सारथी को रथ प्रस्तुत करने के लिए कहे। दिव्या रथ प्रस्तुत हो जाने के संदेश की प्रतीक्षा न कर अंतःपुर से आस्थानागार होती हुई प्रसाद के सिंह द्वार की ओर चली जा रही थी। अपने पीछे डुकुल और पुष्पमालाएं बाहों पर लिए चली आती छाया को उसने आज्ञा दी, महादेवी से निवेदन कर, कुमारी देवी मल्लिका के समाज में जा रही है। दिव्या उद्यान मार्ग से सिंहद्वार की ओर जा रही थी। मार्ग में खड़े अत्यंत वृद्ध निर्बल दृष्टि दास तारुक को अपनी ओर जिज्ञासा से पूर्ण दृष्टि गड़ाए देखकर दिव्या ने मुस्कुराकर पूछा, बातुल तारुक, शरीर स्वस्थ है? तारुक ने दिव्या को पहचान कर स्नेह और आदर से विभोर थुथलाते स्वर में आशीष दी, कुमारी दीर्घायु हो, ससुर प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हो, अनेक दिन पश्चात कुमारी के दर्शन हुए, भद्र कृष्ण सामने प्रस्थान की इच्छा है। देवी मल्लिका के दर्शन के लिए मातुल तारुक, दिव्या ने उत्तर दिया। तारुक ने कुमारी के मुख के समीप आयु से निर्मल नेत्र लाकर प्रश्न किया, क्या स्वामिनी अनेक दिन कला और विनोद से दूर रहने के कारण ही शिथिल और म्लान जान पड़ती है? कुछ उत्तर सूझने से न सूझने के से दिव्या ने आस्थानागार की ओर देखकर प्रश्न किया, मातुल, छाया को विलंब क्यों हो रहा है? और घूम कर देखा, छाया एक द्राक्षावितान की ओट में दिखाई दी। उसके समीप दास बाहुल था। उस ओर से दृष्टि हटाकर दिव्या ने तारुक से पुनः प्रश्न किया, बातुल रथ में विलंब क्यों हो रहा है? उत्तर मिला, कुमारी दास द्वार पर जाकर देखे। दिव्या पीछे न देख उत्तर दिए बिना द्वार की ओर बढ़ गई। छाया द्रुत पदों से सम्मुख प्रस्तुत होकर स्वामिनी को रथ पर चढ़ाने के लिए उसके लहराते हुए उत्तरीय और अंतर्वासक को समेटने लगी। पथ के असम और अश्व के वेगवान होने के कारण रथ हिलोड़े ले रहा था। दिव्या की दृष्टि कभी इधर उधर और कभी रथ के अनुभाग में बैठी छाया पर पड़ जाती। स्वामिनी से दृष्टि मिलने पर उसकी शैथिल्यपूर्ण गंभीरता भंग करने के लिए छाया बोली, भद्रे अनेक दिन पश्चात देवी मल्लिका के प्रसाद में जा रही है, आज भद्रे को संतोष होगा। अपनी कल्पना में गहरी डूबी छाया दिव्या ने छाया की इस बात को अपने ही विचारों के प्रसंगकांक समझकर स्वयं अपने ही को उत्तर दिया, हाँ परंतु जाने आयुष्मान आए अथवा न आए। कौन आयुष्मान आए? उत्सुकता से ग्रीवा उठाकर छाया ने रहस्य के स्वर में पूछा। छाया की आंतरिकता से उत्साह पाकर दिव्या ने उत्तर दिया, आयुष्मान पृथुसेन। उसी समय रथ के पिछले भाग में बैठी कंचुकी पर उसकी दृष्टि पड़ी। संभ्रम से उसने अपनी बात पूरी की, आर्य पृथुसेन ने टाट के धर्मस्थान में मेरी द्वारा आवेदन किया था, उसी संबंध में पुनः अपनी कल्पना में खो गई। देवी मल्लिका संध्या समय समाज के प्रयोजन के प्रसाधन में व्यस्त थी। दासी ने सिंह द्वार पर धर्मष्ट की प्रपोत्री दिव्या का रथ पहुंचने का समाचार दिया। व्यग्रता में सब छोड़कर मल्लिका नंगे पांव बचने के लिए अधीर गाय की भांति सिंह द्वार की ओर चल पड़ी। दिव्या को अधो मार्ग में पाकर अंक में ले उसका सिर सूंघ स्नेह से उसकी चिबुक उठा। मल्लिका ने उपालंब किया, वत्स से इतने तुम क्या भूल गई थी? रुचिरा मुझे वियोग दे गई तो क्या तुम भी भूल जाओगी? मल्लिका ने अपने सजल नेत्र पोछ दिव्या का मुख ध्यान से देखकर प्रश्न किया, हाय तुम निस्तेज क्यों हो रही हो? स्वस्थ हो ना? अश्वनी कुमार तुम्हारी रक्षा करे, तुम कुछ चिंतित हो? मधुपर्व को चौथा पक्ष बीत गया, तुमने अपनी बूढ़ी होती माँ को सुनना ली? मल्लिका एक ही श्वास में सब कुछ कह गई। स्नेह की इस अतिरेक से विहोर हो दिव्या कुछ उत्तर न दे पाई। अपना सिर उसने मल्लिका के उमगते हृदय पर रख दिया। उसके नेत्र संतोष में मुंड गए, परंतु नेत्र खुलते ही उसकी दृष्टि भटकने लगी। क्या आर्य अभी तक नहीं आए? अभी समय नहीं हुआ? दिव्या को अंक में लिए अपने कक्ष की ओर लौटती मल्लिका अब भी अपना उपालंब कहे जा रही थी, पुत्री तुम्ही मेरी आशा हो, मेरी आत्मा की संतति। देवी ने मेरी रुचिरा को छीन लिया, तुम्हें देखकर मैं उसे भूल रही थी, और तुम इतने निठुर हो? वत्स मेरा न सही, वीणा पाणी देवी सरस्वती के कोप का भय करो। पुत्र कितने जन्म की तपस्या से देवी अलौकिक प्रतिभा का वरदान देती है, उसकी उपेक्षा और निरादर करने से देवी के अभिशाप का पात्र बनना पड़ता है। देवी ने तुम्हें अपना अंश अर्पित किया है। मल्लिका ने विशेष उत्साह से अपना श्रृंगार किया। विशेष उत्साह से उसने अभ्यागतों के लिए कापिसायनी और कादम्बनी सुरा के कुटुब प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। वृद्ध वादक वभ्रू को दिव्या के आने का समाचार देकर वादन में विशेष सतर्कता का आदेश दिया। अभ्यागतों ने उपाधान के आश्रय विस्तरों पर स्थान ग्रहण कर लिया। मल्लिका दिव्या को साथ लेकर समाज में उपस्थित हुई। देवी ने वादकों को गांधारी के स्वर उठाने का संकेत कर स्वयं आलाप आरंभ किया। संगीत के पश्चात उसने छलिक नृत्य के लिए आदेश दिए। दिव्या ने इससे सहयोग देने का अनुरोध कर उसने स्वयं नृत्य आरंभ किया। देवी मल्लिका के अनुरोध की उपेक्षा दिव्या के लिए संभव न थी, परंतु वह नृत्य में तन्मय नहीं हो सकी। उसके नृत्य निरंतर दुविधा में पथ और द्वार की ओर लगे रहे। उपस्थित समाज ने सरस्वती पुत्री सागल की सर्वश्रेष्ठ कलाविद युवती को साधुवाद दिया। स्तुति और संतोष प्रकट करने के लिए मल्लिका के आसन का सम्मुख भेंट उपस्थित की, परंतु मल्लिका मौन थी। नृत्य समाप्त हो जाने पर दिव्या को संबोधन कर उसने पूछा, पुत्री अनाभ्यास विद्या का शत्रु हो और पूछा, क्या तुम्हारा चित्त अस्थिर है? मल्लिका के सम्मुख अपराध स्वीकार कर दिव्या ने क्षमा याचना की, माता मैं अस्वस्थ हूँ, केवल दर्शनार्थ चली आई हूँ। मल्लिका शिष्या की पीठ पर स्नेह से हाथ रखे बैठी रही। दिव्या की दृष्टि प्रति कतिपय क्षण में सिंह द्वार और पथ की ओर भटक जाती। समाज लगभग समाप्त होने को था। पृथ्वी द्वार से आता हुआ दिखाई दिया। दिव्या ने संतोष का श्वास लिया, परंतु फिर उस ओर देख न सकी। न देख सकने पर भी उसने जाना पृथ्वी अभ्यागतों के लिए लगे उपाधानों में चुपचाप पीछे की ओर जाकर बैठ गया। वह चिंताग्रस्त और शिथिल जान पड़ा। दिव्या ने हृदय में अन्याय की वेदना अनुभव की। मल्लिका के संकेत से दासियों ने अभ्यागतों के सम्मुख सुरापात्र और तांबुल उपस्थित किए। आलाप और परिहास से चतुस्साल गूंज रहा था, परंतु दिव्या उस आनंदोल्लास में सहयोग न दे पाने से असुविधा अनुभव कर रही थी। वह देख रही थी पृथुसेन भी एक ओर निरुत्साह बैठा था। वह मल्लिका के सस्मित अभिवादन का उत्तर एक क्षीण मुस्कान से देकर मौन और गंभीर था। समाज विसर्जन से मल्लिका ने राष्ट्र नृत्य का प्रस्ताव किया। दिव्या के शैथिल्य के कारण मल्लिका ने सहयोग देने के लिए ना कहा, परंतु पृथुसेन से सम्मिलित होने का अनुरोध किया। देवी पृथुसेन के पद लाघव की प्रशंसिका थी। पृथुसेन क्षमा मांगकर अपने आसन पर ही बैठा रहा। राष्ट्र नृत्य आरंभ होने पर आसनों की व्यवस्था बदल गई। दिव्या शीतलता और वायु के लिए चतुस्साल से बाहर जा रही थी। पृथुसेन के समीप पहुंचकर उसने कुशल क्षेम के विषय में प्रश्न किया। पृथुसेन कुमारी के आदर में आसन छोड़कर उत्तर देता हुआ दिव्या के साथ ही उद्यान में आ गया। आर्य के न्याय आवेदन के प्रति टाट विशेष रूप से चिंतित है। दिव्या ने पृथुसेन के प्रति संवेदना से कहा, वे संभवतः गण परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुस्कुराने का असफल यत्न कर पृथ्वीसेन ने कहा, अर्थात धर्मस्य में परिषद के निर्णय जानने के लिए प्रार्थना नहीं, उनके न्याय शासन के निर्णय के लिए आवेदन किया था। आर्य का कथन सत्य है, समवेदना के स्वर में दिव्या ने स्वीकार किया। पृथ्वीसेन गंभीर होकर बोला, भद्रे ने सारिका का साक्ष्य देकर जिस न्याय का आश्वासन दिया था वह न्याय गण परिषद का नहीं धर्मस्थान का न्याय था। भद्रे में वर्ण का न्याय नहीं धर्म का न्याय चाहता हूँ। गण परिषद स्वार्थों का संघर्ष है, धर्मस्थान न्याय का आसन है। दिव्या ने अपनी उंगलियों के नखों पर दृष्टि लगाए उत्तर दिया, आर्य का कथन सत्य है। और भद्र पृथ्वीसेन फिर बोला, गण परिषद से सहायता पाकर जो न्याय मुझे धर्मस्थान से मिलेगा उसके लिए मैं धर्मस्थान के सम्मुख आभारी न होगा, वह न्याय नहीं सबल का सम्मान मात्र होगा। पृथ्वीसेन के स्वर और शब्दों से दिव्या ने हृदय पर आघात अनुभव किया, सिर झुकाकर उसने स्वीकार किया, आर्य सत्य कहते हैं, धर्मस्थ का कार्य गण परिषद का आज्ञा का पालन नहीं परिषद को न्याय का मार्ग दिखाना। पृथ्वीसेन बोला, दिव्या की को सिर झुकाए मौन देखकर करुणा की मुस्कान से प्रश्न किया, कुमारी की सेविका में कंधा देने की बड़ी महत्वाकांक्षा क्या कुमारी की दृष्टि में भी अपराध है? नहीं आर्य। दिव्या ने दृष्टि उठा उत्तर देने का यत्न किया, परंतु नेत्रों में आर्तता अनुभव होने से ग्रीवा झुक गई। उसने कहा, मैं आदर के लिए कृतज्ञ हूँ। उसकी ग्रीवा और झुक गई। कुछ क्षण दोनों चुपचाप रहे। मौन भंग करते हुए पृथ्वीसेन बोला, भद्रे शीतल वायु के लिए समीप कुंज में ताल के शिलापट पर विश्राम करें। दिव्या ने उत्तर सिर झुकाए पृथ्वीसेन की संकेत की ओर चल पड़ी।